الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو، پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اس مہینے کو شہر الغفران بھی کہتے ہیں. شہر الغفران، شہر رمضان یعنی مغفرت کا مہینہ. اس میں اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کے لیے بہانہ اور ایکسکیوزز تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دے یا میری بندی کوئی ایسا کام کرے کہ میں ان کو معاف کر دوں. جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام والسلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا اس جدو لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، all the angels that prostrated and made sajda to Adam alayhi salat wa salam سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور اس نے وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ رب العزت نے اسے پوچھا ما منعک اللہ تسجد، کس کام نے تم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ شیطان، کس کام نے تجھے میرے حکم ماننے سے روکا، سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے کہا انا خیر من، آئی ایم بہتر دین آدم، آئی ایم بہتر دین آدم. اینڈ فردر اس نے لاجک یہ بیان کی خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور آگ جو ہے مٹی سے زیادہ اعلیٰ ہے، زیادہ ہائر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے اس لیے کہ تو مردود ہے، ریجیکٹڈ ون ہے. مردود کا حکم لگایا. جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دربار سے نکالا تو حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام والسلام پر شیطان کو، بیکوز آف دا جیلسی ہی واز ویری ویری انگری اپون آدم علیہ السلام والسلام، بیکوز آف ہیم اللہ نے مجھے نکال دیا. کہنے لگا میں من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وعن شمائلہم، I'm going to mislead، میں مسلیڈ کروں گا، ڈسٹروئی کروں گا آدم اور سن آف آدم کو، چلڈرن آف آدم کو، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے میں آؤں گا اور इनको मैं गुमराह करूंगा, भटका दूंगा। अल्लाह पाक ने इस कौल को नकल किया है, वला तजिदू अक्सरहुम शाकिरीन। शैतान ने यह भी कहा कि ये लोग तेरा शुक्र अदा नहीं करेंगे, अक्सर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, दे आर नॉट गोइंग टू थैंक यू या अल्लाह। ये बात नहीं, अक्सर लोग तेरे नाफरमान होंगे। मालूम होता है दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने तकब्बुर किया है आदम है, इसलिए उसने कहा चलो अल्लाह तुमने मुझे निकाल तो दिया है जन्नत से, इन्नक मिनल मुनजरी, मुझे टाइम दे दो, चांस दे दो, मोहलत दे दो। तो उसने, उसको टाइम मिल गया ता कयामत, दो टाइम मांगे उसने, उसमें ज्यादातर उसने मांगा कब तक के लिए, कब तक के लिए उसको मांगा कि मैं जब दोबारा कब्र से उठाया जाए तब तक के लिए, कब्र से उठाया जाए तब तक के लिए। अल्लाह ने कहा नहीं, पहले सूर तक तुम्हें हुक्म है, टाइमिंग है कि तू दुनिया में रह सकता है, बहला सकता है, उसके बाद नहीं। तो उसने कहा ठीक है, फबिइज्जती का लउगवियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम, शैतान ने कहा तेरी इज्जत की कसम, मैं उस वक्त तक उनको यानी कयामत तक उनको बहलाता रहूंगा, उनको भटकाता रहूंगा, मिसलेट करता रहूंगा, इल्ला इबाद का, नहीं चल आवाज नहीं जा रही, वहां सुनाई देता है, अच्छा ऑफलाइन एट होम, मे बी स्विच ऑफ इनसाइड, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ। उसने अल्लाह की कसम खाई कि मैं सबको मिसलेट करूंगा, गुमराह करूंगा, हां तेरे मुखलिस बंदे बच जाएंगे। ये सूरह स्वाद की आयत नंबर 23 है। और जब उसने कसम खाकर ये बात कही तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी रहमत की कसम खा ली, उसकी रहमत को जोश आया और फरमाया अगर तूने बहकाया और मेरे बंदे मिसलेद हो गए, भटक गए, गुमराह हो गए, तो सुन अगर वो गुनाहों पर नदामत करेंगे, गुनाहों पर रोएंगे, तौबा करेंगे, तो फिर मैं उसके पिछले सारे गुनाह को माफ कर दूंगा। मालूम होता है अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के आगे कोई बर नहीं सकता है, चाहे कितना ही गुनाह हो। इसीलिए एक सहाबी रो रहे थे, तौबा कर रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा, जो दुआ मैं हर वक्त मांगा करता हूं चलते फिरते, हर वक्त मैं ये दुआ पढ़ता हूं, हर वक्त जो दुआ मैं पढ़ता हूं चलते फिरते, वो दुआ मैं आपको बतलाता हूं, वो दुआ आपको पढ़नी चाहिए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बतलाई, अल्लाहुम्मा मग़फिरतुका औसअ मिन ज़ुनूबिना, अल्लाहुम्मा मग़फिरतुका औसउ मिन ज़ुनूबी या मिन ज़ुनूबिना, पूरे घर के लिए कहते या अपने लिए कहे, अल्लाहुम्मा मग़फिरतुका औसउ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजा इंदी मिन अमली। ये दुआ, इसका पहले तर्जुमा क्या है, अल्लाहुम्मा मग़फिरतुक, ए अल्लाह तेरी मग़फिरत, अगर अरबी में याद न रहे तो उर्दू में मांगे, अपनी जबान में मांगे, अल्लाहुम्मा मग़फिरतुका, ए अल्लाह तेरी मग़फिरत, औसउ मिन ज़ुनूबी, मेरे गुनाहों से हजारों दर्जा बड़ी है, तेरी मग़फ़िरत मेरे गुनाहों से औसा बहुत बड़ी है। मेरे गुनाह तो कुछ भी नहीं है, मेरे गुनाह तो शायद अगर मैं गिनूं तो जमीन से लेकर आसमान तक बहुत बहुत, लेकिन तेरी रहमत तो सातों आसमान सातों जमीन से कहीं ज्यादा। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसा मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजा इंडी मिन अमली, व रहमतुका अरजा इंडी मिन अमली। और तेरी रहमत वो मेरे अमल से बहुत बड़ी है, तेरी रहमत तो तेरी मग़फ़िरत भी बड़ी और तेरी रहमत भी बड़ी। मेरे गुनाह कुछ भी नहीं, मेरा अमल तो कुछ भी नहीं, मैं पढ़ूंगा कितना पढ़ूंगा, कितने घंटे पढ़ूंगा, कितने दिन पढ़ूंगा, कितने साल पढ़ूंगा, कितनी इबादत करेंगे हम, बहुत बहुत। ये दुआ जब उस सहाबी को सिखाई, उन्होंने 3 बार कहा, उस सहाबी ने ये दुआ कितनी बार कही, 3 बार कही ये दुआ। फरमाया खड़े हो जा, अल्लाह पाक में तेरी मग़फ़िरत कर दी, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसा मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजा अरजा अलीफ रा जीम या अरजा उम्मीद व रहमतुका, तेरी रहमत से मैं उम्मीद करता हूं जो मेरे अमल से बहुत बड़ी है। व रहमतुका अरजा इंडी मिन अमली, ये दुआ है बहुत बड़ी दुआ है जो अल्लाह की मग़फ़िरत और अल्लाह की रहमत को बयान करती है। शैतान को तो मोहलत मिल गई, अल्लाह पाक ने कहा ठीक है तू बैला, मैं इनको शबे कदर दूंगा, मैं इनको शबे बरात दूंगा, मैं उनको मुहर्रम दूंगा, मैं उनको हज दूंगा, मैं इनको ज़िलहिज्जा का महीना दूंगा, मैं इनको रमजान का महीना दूंगा, इफ्तार का टाइम दूंगा, सहरी का टाइम दूंगा, वो जितने जो भी गुनाह किए होंगे अगर ये तोबा करेंगे मैंने माफ कर दूंगा। ये अल्लाह पाक ने अपनी रहमत जोश में आई तो ये बात बयान की। शैतान को तो टाइम मिल गया, आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में शैतान को बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए, मिसलेट करने के लिए ताकत तो मिल गई, लेकिन अल्लाह ने कह दिया तेरी कुव्वत, ऐसी कुव्वत मैंने तुझे दी है, न तुझे नींद का तकाजा, न खाने की परेशानी, जा 24 घंटे तू बहकाता है। शैतान कहां सोता है, शैतान सोता है, शैतान सोएगा तो कौन का क्या होगा, शैतान सुला देता है, शैतान क्या करता है सो जा। हदीस में आता है मुस्लिम शरीफ में, फजर की नमाज के वक्त शैतान कान में पेशाब करता है, सो जा सो जा। ये बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। वो नज़म नशीब पढ़ता है लैलुल तवील की, अभी रात लंबी है, सो जा सो जा सो जा, फजर की नमाज वो मिस कर देता है। इसीलिए हमारे बाज बुजुर्गों ने कहा है ये बात 100% है, सुबह उठ के तेरे कान में उंगली डाल के देखना, जैसे आदमी गुसल करके निकलता है ना तो उंगली डाले तो पानी होता है, कहा तूने फजर की नमाज अगर नहीं पढ़ी है तो उंगली डाल के देखना तेरे उंगली के ऊपर पेशाब होगा शैतान का। बाजों ने तो यकीन के साथ कहा है क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है। तो ये सोता नहीं है, सुलाता है, ये खाता नहीं है हराम खिलाता है, ये पीता नहीं है हराम पिलाता है, ये शैतान का काम है। अल्लाह ने कहा 24 घंटे कर जा, तुझे जो करना है कर मेरे बंदों के साथ, ना कोई तुझे टॉयलेट जाने की जरूरत, खावे तो जावे ना पीवे तो जावे, ना टॉयलेट की हाजत, तो क्या होगा, मैंने तुझे नहीं तेजी तुझे औलाद भी बहुत दी, इंसान से 10 गुना ज्यादा, इंसान से हमारा एक बच्चा वो पैदा होता है उसके 10 पैदा हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हो जाते हैं ताकि बराबर काम कर सके ना, इसलिए तेरी औलाद भी ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। और फिर और क्या होगा, तू उनको नजर भी नहीं आएगा, शैतान बैठा में नजर आता है, न खाता है, न पीता है, न सोता है, न टॉयलेट है, न कोई बीमारी है, कुछ भी नहीं, और उसके औलाद भी बहुत ज्यादा, और हम उसको नजर आते हैं लेकिन वो हमें तो नजर ही नहीं आता, नजर ही नहीं आता, जहां चाहे घुस जाए, जिस तरह चाहे घुस जाए। इसीलिए हदीस में है, तुम बिस्मिल्लाह पढ़ कर दरवाजा बंद करो तो सारे विंडो से अल्लाह ताला एक ब्लॉक लगा देता है, वो कहीं से दाखिल नहीं हो सकता। बंद तो आपने दरवाजा किया लेकिन अल्लाह पाक पूरे घर को बंद कर देता है एक बिस्मिल्लाह की वजह से। ये सही हदीस है, अल्लाह की ताकत, और उसी अल्लाह ने इसको भी पैदा किया है। तो 24 घंटे उसको बहकाने का टाइम दिया है, एक मिनट इधर उधर नहीं, कभी यहां है कभी वहां, कभी यहां है कभी वहां, और उसके चेले हर जगह पर है। इसीलिए तो उसने कहा आसमान पर जाना क्यों बंद हो गया, एक जमात को इधर भेजा ईस्ट में, एक जमात को भेजा वेस्ट में, एक जमात को साउथ में, एक जमात को नॉर्थ में, जाकर देखो ना क्या हो रहा है, लगता है आखिरी नबी आ चुका है, इसलिए आसमान ब्लॉक हो गया, हम नहीं जा सकते। पहले आसमान तो ऊपर जाता था, फरिश्तों की बात सुनता था, जाकर के सारे सुनते थे फरिश्तों की बात, और दुनिया में आकर झूठ मिलाकर, फरिश्तों का थोड़ा सच और ये 90% इनका झूठ मिलाकर फिर नजूमियों को बताते थे, फॉर्चून टेलर्स को बताते थे, और वो झूठ फैलाते थे, ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। जाकर एक जमात ने देखा फजर के वक्त में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे हैं फजर में, और वो भी बतन नखला में, वहां एक जगह है वहां, तो सारा शैतान का ग्रुप खड़ा हो गया, सुन रहे हैं। और फजर की नमाज जैसी खत्म हुई तो उन्होंने कहा कुल हु इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्नी फकालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। अल्लाह ने सूरह जिन को उतारी, कई जिन्नातों ने कुरान सुना, फौरन सब के सब मुसलमान हो गए, कुरान सुनकर मुसलमान हो गए। मालूम होता है ये बड़ा शैतान है ना, उसके चेले बहुत है, ये जाते हैं, हाँ ये जाते हैं। इसीलिए अल्लाह पाक ने औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम में अपना जाती नाम बयान किया है, सिफाती नाम नहीं है, सिफाती तो दूसरे 98 है, लेकिन एक नाम अल्लाह का जाती नाम है, अल्लाह का जात का नाम है ये, वही औज़ु बिल्लाह। और बिस्मिल्लाह में जाती भी सिफाती रहमान भी है, रहीम भी है, क्यों, इसलिए कि शैतान को अल्लाह से, अल्लाह को शैतान से जाती दुश्मनी है, नाम भी जाती है। हमारे हजरत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे शैतान अल्लाह का कुत्ता है, शैतान क्या है, अल्लाह का कुत्ता है, और तुम अगर चाहते हो उस कुत्ते से डायरेक्ट लड़ना तो मुश्किल है, इसलिए पहले क्या करो औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। और मिसाल क्या देते थे, किसी के घर में जाना हो तो कुत्ता बैठा हो तो डायरेक्ट आप नहीं जाएंगे, वरना कुत्ता आपको काट लेगा, मालिक के मकान से कहेंगे तेरे कुत्ते को हटा, मैं आना चाहता हूँ, फरमाए मालिक के मकान, ये मालिक के कुत्ता अल्लाह है, हम अल्लाह से कहते औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, ए अल्लाह शैतान से हमारी हिफाजत फरमा, जब हम अल्लाह से शिकायत करेंगे तो अल्लाह शैतान को हटाएगा, हम आराम से फिर कुरान में दाखिल हो जाएंगे, कुरान पढ़ने में, जिक्रुल्लाह में, नमाज में दाखिल हो जाएंगे, हमें वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, काटेगा नहीं, वो तो क्या काटेगा, यानी वसवसे नहीं डालेगा, वसवसे नहीं डालेगा। ये हैं, तो यहां पर 24 घंटे कहा मैं तो नहीं, इधर से भी आऊंगा, मैं तो इधर से भी आऊंगा, मैं तो इधर से भी आऊंगा, अल्लाह अकबर। तो आदम अलैहिस्सलाम को फिक्र हो गई, अल्लाह तूने तो 24 घंटे खाता पीता कुछ भी नहीं, मैं तो आदम हूं, खाता भी हूं, पीता भी हूं, सोता भी हूं, बीवी हवा भी है, और मैं तो नजर भी आता हूं उसको, सब कुछ है, टॉयलेट भी जाना है, अब क्या होगा हमारा, मेरा और मेरी कौम का क्या होगा। आदम अलैहिस्सलाम क्या नेमत है, कोई नेमत तो दे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया जब तेरी औलाद में से कोई बंदा या बंदी अपने किए हुए गुनाहों पर शर्मिंदा होगी, मैं उनके तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा, कि शैतान तड़पने लगेगा कि 40 साल 20 साल 30 साल की मेहनत को एक घंटे में खत्म कर दिया, एक मिनट में ऐसी दुआ तो बाकी इसने रो करके सब माफ हो गया। ये मुस्तदे अबू याला की रिवायत है जो मैंने आपके सामने बयान की, हदीस नहीं। तो ये बात समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला समीअ बसीर सब कुछ है, रऊफ रहीम है, लेकिन अल्लाह पाक ने शैतान से बचने के लिए गोया अल्लाह को कहा कि मुझे बुलाओ, मैं शैतान से तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इसे मालूम होता है कि रमजान जो है वो रमजान में इफ्तारी और सहरी में हमारी दुआएं कबूल होती है। मैंने क्या कहा, ये महीना कौन सा है? शहरुल गुफरान है। इस महीने का नाम क्या है? शहर रमजान, शहरुल गुफरान, मगफिरत का महीना है, मगफिरत का महीना है। मिसाल देते हैं हम, ये बख्शिश का महीना हदीस में है। एक देहाती आदमी कहीं मेला देखने के लिए गया, अल्लाह की शान उसका जेब कट गया वहां किसी चोर ने, वो बहुत परेशान था। घर आया तो बीवी ने पूछा कैसा रहा मेला, तो मेले में गया था ना वो, और मेले लगते हैं ना पहले जमाने में, तो वहां उसका कैसा रहा, कहने लगा मेला क्या था, लोगों ने तो मेरी जेब काटने के लिए मेला लगाया है। वो मेला क्या था, लोगों ने तो मेला लगाया ही मेरे जेब काटने के लिए। गोया उसकी नजर में मेले का पूरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जेब काटना था। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? हालांकि मेला तो कुछ और होता है, लेकिन उसने पूरे मेले को यही मकसद बनाया कि वो तो मेरी जेब काटने के लिए मेला लगा हुआ था। अगर सारी हदीस को सामने रखो तो महसूस होगा बिल्कुल इसी तरह पूरे रमजान का फलसफा हमें नजर ये आता है कि अल्लाह ने रमजान के महीने का मकसद ही बख्शिश रखी है, बाना ही रखा है, आना माफ कर देगा, इसलिए शैतान को बंद कर दिया, फुला फुला सा कितने बहाने हैं देखिए ना। बख्शिश के 12 महीने, 12 एक्सक्यूज़ हैं, 12 बहाने हैं जो हदीस से हमें मालूम होते हैं, और साल के भी 12 महीने हैं। साल के कितने महीने हैं? 12 महीने ना, और बख्शिश के भी 12 महीने हदीस में है। अगर एक एक बख्शिश को भी ले लो, एक बहाने को भी ले लो, तो एक महीने का गुना माफ हो जाएगा। तो अब 12 बख्शिश पर अमल करेंगे, 12 बहाने पर, तो पूरे साल के गुना माफ हो जाएंगे। ये हमें मालूम होता है हदीस से। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने बयान फरमाया वलसौफा युतीका रब्बुका फतरबा, तेरा रब तुझे इतना देगा ए मेरे नबी, तेरा रब तुझे इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। हमारी आजकल की जबान में यूं तर्जुमा करें कि तुझे इतना देगा कि बच्चा कहता बस 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 बस, हमें कहता बस बस हो गया, बस हो गया, बस बस करेगा, पत्थर बाप का यही मतलब है, इतना देगा कि मेरा नबी तू खुद कहेगा बस बस करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते कि एक उम्मती भी जहन्नम में जाए। इतना मांगेंगे, इतना मांगेंगे, हो गया हो गया हो गया हो गया। आपकी खुशी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा इसी में है कि कयामत के दिन एक एक उम्मती की बख्शिश कर दी जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मीद होगी, ये तमन्ना होगी। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को, अपने महबूब के को खुश करने के लिए ये रमजान का महीना दिया है, बख्शिश के बहाने बनाए हैं, जो तेरे बन उम्मती को मैं माफ करता चला जाऊंगा। हाँ, इसलिए पहला बहाना आप देखिए, जब रमजानुल मुबारक आता है, हदीस में है, पहली हदीस बहाना देख लीजिए, तो अल्लाह तबारक व ताला जिब्राइल को भेजता है, जाओ ना शैतान को बांधो, यह हदीस में सुलसिलति शयातीन तिर्मिज़ी शरीफ में, शैतान को जेल में डालो ताकि मेरे महबूब की उम्मत के रोजों को खराब न करे, मेरे महबूब की उम्मत के फास्टिंग को खराब न करे। तो उसको बंधवा दिया जाता है जिब्रेल के वास्ते से। यही होता है जब किसी का दोस्त किसी से लड़ रहा हो तो उसके दुश्मन के हाथ ऐसे पकड़ता, मार उसको, मार पकड़ता ना ऐसा, मार उसको, तो दुश्मन के हाथ पकड़ लेता है और दोस्त की सपोर्ट कर लेता है मार पीछे से। तो जब मैं ये हदीस पढ़ता हूं सुलसिलतु शयातीन की, तो मुझे यही बात याद आती है कि अल्लाह तबारक व ताला बदमाश को पकड़वा कर मरवाते हैं और कहते हैं ए मोमिन, रमजान के अलावा बाकी सारे महीने 11 महीने तू ये तुझे देखता है, तू उसे देख, देखते तुम शैतान को कभी, और कभी घर में काला काला नजर आए, लेकिन नजर तो नहीं आता हूं, समझ में आई बात। फरमाया ये 11 महीने ए मोमिन तुझे बहकाता है, तुझे देखता है, तू उसे देख नहीं सकता। अब मैं इसका बंदोबस्त करता हूं, मैं फरिश्तों के जरिए इसको बनवाता हूं, हाथ पकड़ता हूं उसके, तुझे आमाल करने का, रोजा रखने का, तोबा करने का, जिक्रुल्लाह करने का बहुत ही गोल्डन चांस देता हूं मैं, गोल्डन चांस है ये, इस महीने में तू ऐसे आमाल कर कि उसके जाने से पहले तुझे, यानी इस रमजान के महीना जाने से पहले तुझे अल्लाह की रजा हासिल हो जाए। अगर शैतान खुला हुआ हो तो रोजा रखना भी मुश्किल, तरावी तो पढ़ना ही मुश्किल, जो फर्ज नहीं पढ़ते आम दिन, तरावी पढ़ना भी मुश्किल। देखो रमजान में गुनेगार भी आते हैं तरावी पढ़ने के लिए, शराबी भी आते हैं किसी न किसी बहाने से, कुरान भी पढ़ लेते हैं कुछ ना कुछ इबादत। तो ये शैतान क्या करता, अगर बंधवाया न जाता तो फिर वो हमारे रोजे खराब कर देता, हमारी बात। तो उसको एक मिसाल से समझिए, जब कोई इंसान खेत फार्मर है, बीज लगाता है, तो उसमें से कुछ पौधे, यानी कुछ पौधे प्लांट निकलते हैं, लेकिन बास कुछ वायरस लग जाता है और बास में कुछ बैक्टीरिया लग जाता है, तो हरे पौधे को क्या कहते हैं, नहीं नहीं निकलते हैं, कुछ निकलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान को कैद कर दिया, तो उसका बुनियादी मकसद यही था कि मेरे बंदो पहले तुम 100 अमल करते थे, 100 अमल करते थे, 100 अमल करते थे, हो सकता है अजर मिलने के काबिल सिर्फ 10 हो। जैसे हम खेत में बीज डालते हैं ना, तो सारा तो नहीं निकलता है, कुछ बीज तो खराब हो जाते हैं या कुछ पौधे खराब हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर तो हो सकता है और दिन के अंदर में कि तुम 100 अमल करो उसमें से तुम्हारे 10 ही कबूल हो। अब जब मैंने शैतान को बांध लिया, वायरस खत्म कर दिया है, बैक्टीरिया मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया है, तो ये तुम्हारे अमाल को खराब ही नहीं कर सकता, तुम्हारे 100 के 100 अमल रमजान में बाकी रहेंगे। वो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मेरी अकल में तो समझ में आ गई, छोटी अकल आपको तो समझ में आती होगी कि अल्लाह क्या करे। ये एक बहाना है हदीस में, 12 बहाने हैं, 12 एक्सक्यूजेस है अल्लाह को माफ करने के, क्योंकि 12 महीने हैं तो अल्लाह पूरे साल के गुनाह माफ करना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरा बहाना हदीस में आता है, फरमाया कुरान करीम में, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसाले, एक रोजा रखोगे, एक नेकी का काम करोगे और दिनों में, एक रोजा रख लिया, एक नमाज पढ़ ली, तो आपको 10 मिलेगा, कुरान करीम में 10 मिलेगा। लेकिन हां अगर तुम्हारा इखलास ज्यादा है तो कम असली हब्बतिन अम्बतत सबा सनाबिल फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, यानी अगर तुमने इखलास के साथ करोगे तो एक नेकी से आपको 700 दाने भी मिल सकते हैं। एक मिसाल दी अल्लाह पाक ने कि एक तुमने दाना डाला और निकले उसमें 700 दाने होते हैं। इस तरह तुम एक अमल अगर इखलास के साथ करो तो अजर को हम 700 गुना बढ़ा देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाह मेरी उम्मत के अमाल का अजर और बढ़ा दे, और बढ़ा दे, तो कुरान करीम में अल्लाह ने एक और आयत उतार दी, इन्नमा युवफ्फस साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब, जाओ जाओ तुम्हारी उम्मत को मैं बेहिसाब दे देता हूं, कोई काउंटिंग नहीं करता हूं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही दुआएं थी। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स आदाब के साथ एतिकाब करता है अल्लाह उसको दो हज और दो उम्रे का सवाब देता है। तो एतिकाब पर अल्लाह ताला ने अजर इतना दे दिया कि दो हज पढ़ने का और दो उम्रा करने का, ताकि मेरे बंदे का अमल जो है वो 10 दिन का हो एतिकाब का, लेकिन उसके नाम अमाल नेकियों से बढ़ जाए, इतना ज्यादा अमल। ये कश्फुल गुम्मा की हदीस है। तो दूसरा बहाना ये है कि अगर तुम इस तरीके से इबादत और दिनों में करोगे तो 10 है, लेकिन रमजान में एक फर्ज 70 फर्ज के बराबर है। जी जो बात हो गई बने हैं। तो एक का 10, एक के 10 मिलते हैं, लेकिन और दिनों में कितना है भाई? 10 है, लेकिन रमजान में 70 नमाज के बराबर है। और अगर इखलास होगा तो कहीं ज्यादा हो जाएगा। ये दूसरा बहाना है कि रमजान में अगर कोई आदमी एक नफल पढ़े तो एक फर्ज के बराबर है, एक फर्ज के बराबर है। ये दूसरा बहाना है। तीसरा बहाना हदीस में है, इफ्तारी के वक्त दुआएं कबूल होती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये तीसरा बहाना है, लेकिन दुआ भी यकीन के साथ करना है, दुआ भी यकीन के साथ करना है। अगर कोई दुआ यकीन के साथ करेंगे तो फी कुल्ली, हदीस में है, फी कुल्ली यौमिन व लैलतिन दावतुन मुस्तजाब, 60 आपको चेक बुक दे दिए, 60 कितने, एक इफ्तारी का और एक सहरी का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर इफ्तारी में और हर सहरी में तुम्हारी दो दुआएं रोजाना कबूल होती है। फी कुल्ली यौमिन, डे टाइम यानी इफ्तारी टाइम, व लैलतिन और सहरी टाइम दुआएं कबूल होती है। तो दिल खोल कर अल्लाह से मांगे, दो चार बातें ना मांगे, अपने लिए मांगे, अपने माँ बाप के लिए मांगे, अपने औलाद के लिए मांगे, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए मांगे, पूरी उम्मत के लिए मांगे, अपने रिश्तेदारों के लिए मांगे, दिल खोल कर, इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया। एक औरत आई मिसाल के तौर पर, कहने लगी मैं अल्लाह से कुछ नहीं मांगती, हाँ ये कहती हूं अल्लाह तबारक व ताला मेरे इस एक मुराद को पूरी कर दे, ज्यादा नहीं मांगती, एक ही मांगती। उसको समझाया, वो खुदा की बंदी क्या कह रही हो, क्यों बहुत कुछ नहीं मांगती? अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें सेहत न दे तो क्या हाल होगा तुम्हारा? तुम्हारी आंखों की कमजोरी चली जाए तो क्या होगा? अल्लाह तुम्हारे शोहर को अलग कर दे तुम्हारा क्या होगा? अल्लाह तुम्हारी अकल को खराब कर दे क्या होगा? ये सब कुछ मांगना चाहिए, ये सब कुछ है। अल्लाह मुझे सेहत दे, मुझे आंखों की रोशनी दे, हे अल्लाह अंदर के जितने सिस्टम तू चला रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम ना हो, किडनी का प्रॉब्लम ना हो, लंग्स का प्रॉब्लम ना हो, पैरों में दर्द का प्रॉब्लम ना हो, मैं चलता रहूं, दिमाग मेरा खराब ना हो, आखिरी दिन तक मौत तक मेरा दिमाग बराबर काम करे, याद शक्ति खत्म ना हो। कितनी दुआएं मांग सकते हैं आदमी? इतना ही मांगता रहता है, बस बरकत देना, बरकत देना, बरकत देना। बहुत कुछ मांगना है, अपनी औलाद के लिए मांगना है, अपने घर के लिए मांगना है, बहुत कुछ मांगना है, उनकी सेहत के लिए, उनकी आफियत के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए, अपने नवास और पोतों की तंदुरुस्ती के लिए, फिर दीन के लिए मांगना है, दीन में ये भी देना, हाफिज बनाना, पुना करना, पुना करना, हिदायत पर चलाना, मोमिन बनाना, जाकिरीन में, कितनी क्या क्या दुआएं तुम मांग सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला से। नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में अल्लाह खुशू देना, खुजू देना, लंबा सजदा करने की तौफीक दे, लंबा रुकू करने का अल्लाह, कुरान पढ़ने की तौफीक दे, अंदर से जो शैतान के काम है, वसवसे हैं, गीबत है, हसद है, बुक्स है, निकाल दे, ये सब चीज बहुत कुछ मांगना है। हम तो दो चार चीजें मांग के दुआ खत्म कर देते हैं। अल्लाह तबारक तुम लाख मांगो तो करोड़ देता है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके फजलो करम का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देता है, लाख मांगो करोड़ देता है। हमें तो मांगना अल्लाह से, अल्लाह का खजाना तो बड़ा हुआ है, कोई उसकी एंड नहीं है। तो ये तो तीसरा बहाना, दुआ रात दिन कबूल होती है। छोटा बहाना, रमजान मुबारक की हर रात में, हर रात में, आखिरी दिन में नहीं, हर रात में 10 लाख
आदमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई अल्लाह उसको आजाद कर देता है हर रात में। ये तो समझाने के लिए अल्लाह पाक है मेरे और आप है। और कितना वो माफ करेगा, हदीस में है बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर। और उनके यहां कितने बकरियां थी, एक पहाड़ उधर है एक पहाड़ उधर है, उसके दरमियान में पूरी जगह बकरियों से भर जाती थी, इतनी बकरियां। और ये बकरियां नहीं, भेड़ जिसको कहते हैं हम, जिसको हम ये क्या कहते हैं, भेड़, भेड़ कहते हैं ना, जिसके ऊपर बाल बहुत होते हैं, वो काटना पड़ते हैं बाल को वुल के लिए, वो इतने कितने बाल होंगे। फरमाया हर रात में अल्लाह इतने बंदों को जहन्नम से आजाद करता है। मैंने तो यही तो कहा कि अल्लाह ने रमजान के महीने ही को मकसद बनाया माफ करने के लिए, जैसे उसने क्या कहा मेला ही बना जेब काटने के लिए, अल्लाह ने रमजान के महीने को बनाया, इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा, शहरुल गुफरान। क्या नाम रखा मैंने इस महीने का, शहरुल गुफरान। ये है चार बहाने। और पांचवा बहाना, हां चौथा बहाना, मखलूक को रोजेदार की दुआ में लगा दिया, और तू तो रोजा रख ले, तू सोता है ना फजर के बाद जोहर तक रोजे की हालत में, कभी थका काम पर से आके सो जाता है, कभी सुस्ती करे, कभी मांगने का मौका न मिले, कभी कुछ खरीदना है बीवी ने कहा आज तो क्या है वेजिटेबल लाओ, ये बनाते हैं फुला बनाता है, ये ले आओ वो ले आओ, बिजी हो जाता है दुनिया के काम में, मसरूफ होकर महरूम हो जाए। तो महरूम से बचाने के लिए और मगफिरत पाने के लिए अल्लाह ताला ने बिलों के अंदर चूटियों को हुक्म दे दिया, पानी समंदर के अंदर मछलियों को हुक्म दिया, हवा में परिंदों को हुक्म दे दिया कि भाई रोजेदारों के लिए दुआ करते रहो। ये बहाना, इससे बढ़कर क्या बहाना है, ये शहरुल गुफरान है, मगफिरत का महीना है। फिर भी इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, लेकिन जिनको रमजान का महीना न मिले उसकी मगफिरत न, वो हलाक हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। उसके लिए जिब्राइल ने बद्दुआ की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही। मालूम होता है ये चौथा बहाना है। और पांचवा बहाना, ये पांचवा बहाना था, 10 लाख जहन्नमियों को आजाद करते हैं बल्कि बालों से ज्यादा बकरियों के। और छठा बहाना, इसमें एक रात ऐसी दे दी जो 1000 महीनों से बेहतर है, 83 ईयर्स इबादत करो इससे ज्यादा है। और ये बात तो यकीनन है जो बैठ जाता है एहतिकाफ में तो उसको तो मिलना ही मिलना है, चाहे वो सोया हुआ हो, चाहे वो बैठा हुआ हो, चाहे वो कुरान तिलावत कर रहा हो, चाहे तस्बीह पढ़ता हो, उसको तो शबे कदर मिलनी ही मिलनी है, इसलिए कि वो तो बैठा हुआ है। और हर मस्जिद में हर जगह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल मिहराब तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, वह एहतिकाफ वालों कितने नसीब वाले हैं, फरिश्ते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम सलाम करते हैं उनसे, सलाम करते हैं। इसलिए ये जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है, जैसे जनाजे की नमाज है, कुछ लोग पढ़ ले तो सबके ऊपर से गुना निकल जाता है, एहतिकाफ में बैठ जाए तो सबके ऊपर से, लेकिन मेरे नबी ने और दूसरे काम सुन्नत अलल किफाया कभी किया कभी नहीं किया कभी, लेकिन ये काम कभी नहीं छोड़ा। आपने मदीना मुनव्वरा में हर साल बैठे हैं, मैं कौन आप कौन है, इमामुल अंबिया है। और खुद फरमाया कि मैंने पहले हफ्ते में तलाश की नहीं मिली, दूसरे हफ्ते में मेरे साथ बैठना हो तो बैठ जाओ, तीसरे हफ्ते में मिली जाएगी। और तीसरे हफ्ते में फिर यकीन के साथ बयान किया कि तीसरे हफ्ते में अब शबे कदर मिलेगी। इसलिए जो 10 दिन जो आखिर में एहतिकाफ में बैठ जाता है यकीन उसको शबे कदर मिलने वाली है। करना क्या है, बैठ के अल्लाह अल्लाह करना है, घर पर भी बैठना है यहां पर भी बैठना है, खा पी करके थोड़ा आराम किया कुरान पढ़ लिया बस अल्लाह के साथ लव लगा लिया, सोते उठते बैठते दुआ कर ली, करना क्या है, घर पर भी जाके क्या करोगे आप बताओ। ये बड़े बूढ़े तो वैसे ही बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है, बहुत बहुत तो टीवी ऑन कर दी है, ड्रामा देख लिया फुला देख लिया, और क्या करेंगे बताओ मुझे। या तो बीवी बीवी बुढ़ी बीवी का पैर दबा लिया है उसने तुम्हारे पैर को, तब उससे ज्यादा क्या करेंगे तुम, यहां से जाना आना, इससे बेहतर आपका हर सेकंड हर घड़ी अल्लाह के घर में एक एक नेकी तुम्हारी। इसलिए कि जब तक बंदा अल्लाह के घर में वुजू के साथ होता है हर सेकंड फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है, अल्लाह इसकी मगफिरत कर दे, अल्लाह इस पर रहम कर दे, अल्लाह इसकी मगफिरत कर दे, कितना बड़ा सवाब है। इसलिए इसमें एक रात है जो हजारों महीने से बेहतर है, 83 ईयर्स से बेहतर है। ये कब तक सलाम होता है फरिश्ते का? ये हत्ता मतलईल हजर, सुबह सादिक तक सलाम होता है। ये तो मिलना ही मिलना है सहाबे किराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हजरत आयशा हजरत अफसा वो भी एतिकाफ में बैठती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी, और उनके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी, इंतकाल होने के बाद अल्लाह के नबी का बीवियां एतिकाफ में बैठती थी। घर में अगर बूढ़ी औरत एतिकाफ में बैठ जाए, जवान बहू या जवान बेटियां अगर काम करने वाली है, खाना पकाने वाली है, तो फिर बड़े बूढ़ों को बैठ जाना चाहिए घर में औरतों को, और ताकि घर में बरकतें हो, घर में रहमतें आए, घर में फरिश्ते आए, घर में कितनी दुआएं मिलेगी अल्लाह के यहाँ। अब तो जाने का वक्त होता है और एक पैर कब्र में लटका हुआ है, एक पैर दुनिया में है, फिर भी अल्लाह की तरफ नहीं आता। टाइम आ चुका है, वो मेरा नबी से बढ़कर कौन हो सकता है? 10 साल बैठे एतिकाफ में, 10 साल आपकी, 10 साल मदीना की जिंदगी में, 1 साल आप थोड़ा फतेह मक्का के लिए चले गए, आपका मिस हो गया, तो दूसरे साल 20 दिन के लिए बैठे, कब्र अब कर लिया, किसकी मगफिरत? लैलतुल कदर में सबकी मगफिरत हो जाती है, हाँ जो तोबा न करे शराब से, हाँ जो तोबा न करे वालिदैन की नाफरमानी छोड़ने से, और जो रिश्तेदारी को खत्म कटा ताल्लुक का करता रहे या सीने के अंदर बुग्ज रखे, हेतरत रखे किसी के लिए, उनकी मगफिरत नहीं होती है, उनको तोबा करनी पड़ेगी। तो लैलतुल कदर में मजे की बात सुनाऊं मैं सबसे अच्छी, जो हदीस में है, इसरा जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ जमीन पर उतरते हैं और एक झंडा लगाते हैं, अतरगीब अतरहीब की हदीस है जी, सफा नंबर 100 पर है, ऐसा झंडा फ्लैग लगाती है, कहां पर? गांव से बाएं, शहर से बाएं, जहां कहीं इसकी इस ब्रेफर एक है, इसकी एंड खत्म होती है, वहां ऐसा एक चौराहे पर झंडा लगाती, फ्लैग लगाती, और जो लोग दुआ मांग रहे हो, फरिश्ते सब मिलकर उनकी दुआओं में शरीक हो जाते हैं। और कितने फरिश्ते आते होंगे? मलाइका है जमा, है ना, बहुत फरिश्ते आते हैं उस रात में, बहुत फरिश्ते, और वो भी आमीन कहते, तू मांग, तू मांग, हम आमीन कहते हैं, तू मांग, हम आमीन कहते हैं। गोया बंदे और फरिश्ते दोनों दुआ में शामिल है, बंदे और फरिश्ते, इस तरह दोनों मिलकर जमात बन गई और जमात ने दुआ की, उसकी बरकत से खुदा पाक फरमाते हैं, गुनेगार बंदे हमने तुम्हारी मांगी हुई दुआ को कबूल कर लिया। अल्लाह खुद कहता है तुम्हारी दुआ। ये तो 6 बहाने हो गए, 7वां बहाना आखिरी आखिरी रात में मगफिरत ज्यादा कर दी। हदीस पाक में आता है, पहली रमजान से आखिरी रमजान तक जितने जहन्नमी, मैंने आपको बताया अभी, हर रात में कितने बताए? 10 लाख हर रात में, एक अंदाजा है। आखिरी रात होती है रमजान की, पूरे रमजान में जितने अल्लाह ने माफ कर दिए, इतने एक रात में माफ होते हैं। ये तरगीब की हदीस है, तरगीब तरहीब की जिल्द नंबर 2 और सफा नंबर 98 पर इस हदीस को नकल किया है। रात व बहाना अच्छा हो सकता है, किसी ने रमजान की रात में एहसास नहीं किया, ईद की रात आ गई, चलो भाई ईद की रात भी तुम्हारी लैलतुल जायजा है, उस रात में भी अगर उठकर थोड़ी तहज्जुद पर ली तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये रात बरकत वाली है, कयामत में उसको कभी भी बेहोश नहीं होगा, उसका दिल जिंदा रहेगा। जो ईद की रात में उठकर थोड़ी सी ईशा के बाद तहज्जुद पर ले, और 9वां बहाना कोई बंदा अगर दुआ भी नहीं करता तो फरमाया जितने भी गाफिल बंदे हैं ईद के दिन अच्छे कपड़े पहनकर सारी ईदगाह में आ जाते हैं, देखा शराबी भी आ जाता है, कबाबी भी आ जाते हैं, ईद में सभी आ जाते हैं ना, सभी आ जाते हैं, तो फरमाया कूमु मगफूरुल लकुम, जाओ सब दोबारा अपने घर पर, मैंने सबकी मगफिरत कर दी। कितने बहाने हैं, बहाने देखते चले जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला। और चलो 10वां भी कह देता हूं, ये रोजे और ये कुरान में सुनते जो तरावी में, कयामत के दिन हमारे लिए क्या करेंगे? वो सिफारिश करेंगे, और कयामत के दिन ये हम बाबुर रियान से दाखिल होंगे। और 11 है, मन साम रमजान, जो हदीस मैंने शुरू में पढ़ी, ईमान व एहतिसाबन, जो आदमी रोजा रखे ईमान के साथ, इखलास के साथ, پوری زندگی کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے. اور بارواں بہانہ اللہ رب العزت نے تمام عبادت کے اجر کے لیے ایک قانون بنایا, فرشتوں کو کہہ دیا الصوم لی وانا اجزی بھی, جاؤ روزہ میرے لیے ہے, فرشتے بھی تمہیں ثواب نہیں دیں گے, میں خود اللہ تم کو ثواب دے دوں گا یا میں اللہ تمہارے لیے ثواب بن گیا. یہ بہت بڑا بہانہ ہے. اس لیے رمضان میں کثرت سے عبادت کیجیے. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بی بی آئی, چلو بھائی جو بیت ہونا چاہتے ہیں جی کچھ کہنا. اچھا جو بیت ہونا چاہتے ہیں تو یہ کلمات پڑھ لے میرے ساتھ دہرائے, ٹھیک ہے؟ اردو میں انگلش میں؟ اردو میں انگلش میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یبایعون یبایعون اللہ. So the words I'm going to say, you just follow me and say from your mouth, okay? I believe in Allah. I believe in all the messengers. I believe in all the angels. I believe in all the books which is revealed from Allah Tabarak wa Ta'ala. I believe in Jannat. I believe in Jahannam. I believe in Taqdeer, good and bad. Everything from Allah Tabarak wa Ta'ala. I am promising, I am going to perform my 5 times Salah. میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گی. Number 2, when the month of Ramadan come, I am going to fast. If Allah give me wealth, I will give zakat. If Allah give me wealth, I will go and perform Hajj, my Faraz Hajj. I am making Tawbah, repenting towards Allah from Kufr, from Shirk, from all the major sins, from adultery, from backbiting, etc. Ya Allah, accept my Tawbah. Ya Allah, accept my Tawbah. Ya Allah, accept my Tawbah. I am becoming bad, pledging on the hand of Siraj in 4 silsila. Qadriya, Seherwardiya, Naqshbandiya, Chistiya. Ya Allah, accept my bet. Ya Allah, accept my bet. Ya Allah, accept my bet. Theek hai, dua kar lo. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan abada ala habibika khayril khalqi kullihim jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bima huwa ahlu. Ya arhamar rahimin. لك الحمد ولك الشكر, لك الحمد ولك الشكر, لك الحمد ولك الشكر. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ رمضان کا مہینہ بہت جلدی گزر رہا ہے, اللہ ہمیں محروم نہ کرنا, ہمیں محروم نہ کرنا, ہم سب کو معاف کر دے, ہم سب معاف کر دے میرے مولا, ہم سب کو معاف کر دے, ہماری اہل اولاد کو معاف کر دے, ہماری اہل اولاد کو معاف کر دے, ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے, ہمارے بھائی بہنوں کو معاف کر دے, ہمارے جتنے بھی اقارب و رشتہ دار ہیں ہماری طرف سے, بیوی کی طرف سے, باپ کی طرف سے, ماں کی طرف سے, بھائیوں کی طرف سے, سارے رشتہ داروں کو معاف کر دے, سارے رشتہ داروں کو معاف کر دے. یا اکرم الاکرمین, یا ارحم الراحمین, پوری امت کی مغفرت فرما, زندوں کی مردوں کی مغفرت فرما. اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, تو ہی تو ہے, اللہ ہمیں معاف کر دے, ٹوٹے پھوٹے روزے قبول کر لے, عبادت قبول کر لے. اے اللہ تیری محبت میں ہم روزے کے ساتھ تیری یاد کے لیے بیٹھے ہیں, تیرا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ہمیں معاف کر دے اللہ, ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. نیک بندوں میں شامل فرما، ایمان پر باقی رکھنا اور ایمان پر موت بھی دینا، تیری رضا والی موت دینا اللہ. تیری جن بندیوں نے ابھی بیعت کیا ہے اللہ، یہ مجھ سے نہیں، تیرے ہاتھ پر توبہ کی ہے اے اللہ. تو نے خود قرآن میں فرمایا یبایعونک یبایعون اللہ، تجھ سے بیعت کرنے والے وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اے اللہ. میں تجھ سے توبہ کی ہے، تجھ سے توبہ کی ہے اللہ، انہیں معاف کر دے اللہ، انہیں معاف کر دے، زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ. استقامت علی الدین نصیب فرما، استقامت علی البیعت نصیب فرما. گناہ ہو جائے توبہ کی توفیق نصیب فرما، گناہ ہو جائے انسان ہے توبہ کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کو آباد فرما، ہماری اس مسجد کو آباد فرما اللہ. ہمیں صحت کاملہ نصیب فرما، ہمیں صحت کاملہ نصیب فرما اللہ، صحت عاجلہ نصیب فرما اللہ. گھروں میں ہماری اعلی اولاد کو صحت کاملہ نصیب فرما، جو بیمار میں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا اللہ. میں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما اللہ. اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.